ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत हम सबने सुना। बाबा के प्यार के तो हम सभी अनुभवी हैं। बाबा जब मुरली शुरू करते हैं तो शुरुआत भी अपने प्यार को प्रकट करते हुए करते हैं। इसलिए भक्ति में लोगों ने भगवान को कहा कि तू प्यार का सागर है। बाबा इसको करेक्ट करते हुए कहते हैं कि बच्चे पहले बोलो ज्ञान का सागर है। लेकिन बाबा जो मुरली की शुरुआत करते हैं उसमें इतना प्यार बच्चों के लिए बरसाते हैं कि भक्तों को वो प्यार ही याद रह जाता है। और इसलिए भक्ति मार्ग में तू प्यार का सागर है वो प्रकट होती है भावना। याद भी क्या है, बाबा कहता है मुझे निरंतर याद करो, कर्म योगी बनो। तो याद भी क्या है, याद माना भगवान के लिए प्रेम। जिसका जितना ज़्यादा प्रेम है उसको उतनी ज़्यादा याद सरल रूप में आती है। और हमारे जो चार सब्जेक्ट हैं उसमें योग सबसे सूक्ष्म है। आज भी बाबा ने कहा कि खाना खाने लगता हूँ तो खिसक जाती है याद। खिसकनी वस्तु है, बहुत सूक्ष्म चीज़ को बुद्धि में स्थिर रखना ये बहुत अटेंशन की बात है। तो योग बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत शक्तिशाली। और हमारी बाकी धारणाओं को भी बनाने वाला है। इसलिए इस सूक्ष्म सब्जेक्ट में हम जितनी ज़्यादा मास्टरी कर लेते हैं तो उतना ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना सरल हो जाता है। हम सब ने सुना है कि योग से हमें बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं। लेकिन योग से जितनी शक्तियाँ मिलती हैं ये भी सत्य है कि योग लगाने के लिए भी कुछ शक्तियों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं योग से सहन शक्ति मिलती है, लेकिन योग लगाने के लिए भी सहन शक्ति की जरूरत होती है। हम कहते हैं योग से समाने की शक्ति मिलती है, लेकिन योग लगाने के लिए समाने की शक्ति की जरूरत पड़ती है। योग से मनुष्य में परिवर्तन शक्ति आती है, लेकिन योग लगाने के लिए भी परिवर्तन शक्ति की जरूरत है। तो योग से शक्तियाँ मिलती भी हैं और योग लगाने के लिए कुछ शक्तियों की जरूरत भी पड़ती है। अगर वो ना हो तो योग लगता ही नहीं। अब जैसे एक बहुत बड़ी शक्ति है भूलने की शक्ति। जो चीजें हमारे काम की नहीं है उनको हम भूल जाएं, जिन चीजों ने हमारे माइंड को यूजलेसली घेर के रखा हुआ है उनको हम डिलीट कर दें, इसी का नाम भूलना है। अब ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर किसी के अंदर ये शक्ति हो कि व्यर्थ बात को तुरंत भूल जाए तो वो तो बहुत परफेक्ट योगी बन सकता है। लेकिन कोई व्यर्थ बात को भूले ही ना, कोशिश करता रहे और वो बात वहीं जमी रहे, तो जब भी योग में बैठेगा वही बात याद आएगी, वही बात याद आएगी, योग लगेगा नहीं। इसलिए भूलने की शक्ति कहीं कहीं नुकसानकारक है और कहीं कहीं बहुत फायदेमंद भी है। कई बार मनुष्य उल्टा कर लेता है, जिन बातों को भूलना चाहिए उनको याद रखता है, जिनको याद रखना चाहिए उनको भूल जाता है। अगर हम उल्टा कर लेते हैं तो नुकसान ही नुकसान है, लौकिक जीवन में भी नुकसान, अलौकिक जीवन में भी नुकसान। और अगर हम सही तरीके से याद रखने वाली बातों को याद रखते हैं, भूलने वाली बातों को भूल जाते हैं, तो लौकिक जीवन भी सफल और हमारी अलौकिक साधना भी सफल। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो पहले जमाने में तो बच्चे स्लेट पे लिखते थे, आजकल तो रफ कॉपी पे लिखते हैं। रफ कॉपी पे लिखा हुआ तो नहीं मिटता, लेकिन स्लेट पे बत्ती से लिखते थे, तो जब चाहे लिख लो, जब चाहे मिटा दो। तो बच्चे के लिए लिखना भी सरल है और मिटाना भी सरल है। ऐसा नहीं है कि लिखने में तो बहुत सरलता और मिटाने में बहुत मेहनत लगती है, स्लेट पे तो दोनों ही बातें सरल है। लेकिन मानव जीवन में दोनों बातें एक समान सरल नहीं है। कई बार लिखना बहुत सरल होता है लेकिन मिटाना बहुत मुश्किल होता है। संस्कार बना तो लिया लेकिन उसको मिटाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जैसे भुलाने की शक्ति चाहिए योग के लिए, ऐसे ही मिटाने की शक्ति भी चाहिए योग के लिए। जाने अनजाने हमारे संस्कारों में जो कुछ लिखा गया बचपन में, अज्ञान काल में, या ज्ञान में आने के बाद भी किसी कारणवश उसको हम मिटा दें, तब हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा। मन जितना ज्यादा खाली होगा उतना ही शिव बाबा की याद, शिव बाबा का प्रेम उसमें समाएगा। जैसे आजकल तो कंप्यूटर की बातों का हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। सीडी में अगर हमने बहुत सारा मैटर पहले ही डाल रखा है और उसमें हम कोई अच्छी चीज़, कोई फरिश्ता डालना चाहें, फरिश्ते का चित्र, तो कहेंगे भाई नो स्पेस, कंप्यूटर दिखाएगा। अरे भाई ये फरिश्ते का चित्र तो बहुत अच्छा है। भाई अच्छा तो है पर उसमें स्पेस ही नहीं है, अब आ ही नहीं सकता। तो स्पेस होगा तो अच्छी चीज आएगी। तो ये ह्यूमन माइंड भी एक सीडी की तरह सी है, इसमें स्पेस होगा तो याद समाएगी, प्यार समाएगा। स्पेस ही नहीं होगा, पहले ही फुल है तो कहाँ समाएगा। इसलिए स्पेस रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान और बाबा की याद समा सके। तो योग को सरल बनाने के लिए हम कुछ और बातों पे थोड़ा गहराई से अभी चिंतन करेंगे। मनुष्य की जो मेमोरी है, स्मृति है, वो बहुत बहुत विशाल नहीं है, लिमिटेड है मेमोरी, स्मृति। जैसे कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार है, दुकान में सामान बेचता है, तो दुकान अनलिमिटेड तो नहीं होती है ना, उसमें वो कुछ ही सामान रख सकता है। तो हमारी मेमोरी भी ऐसी ही है, हम उसमें कुछ बातें रख सकते हैं लेकिन सबकी सब बातें तो नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता। तो कौन सी बातें मेमोरी में रह जाती हैं और कौन सी बातें मेमोरी से चली जाती हैं, इसका भी एक नियम होता है। तो वो जो नियम है उनको अगर हम जान लें तो शिव बाबा को याद करना, शिव बाबा के गुणों को याद करना हमारे लिए सरल हो जाएगा, अगर वो ला हमें समझ में आ जाए। हमारी जो मेमोरी है वो कौन से ला के आधार पर काम करती है, वो समझ में आ जाए तो बाबा को याद रखना सरल हो जाए। जैसे एक ला है जिसको हम कहते हैं ला ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी डिसेंट शब्द से बना है, अंग्रेजी में डिसेंट कहते हैं, बहुत सुंदर चीज, बहुत लवली चीज, बहुत बढ़िया चीज, बहुत ऊंची क्वालिटी की चीज होती है उसको डिसेंट कहते हैं। ये डिसेंट कुछ भी हो सकता है, डिसेंट दृश्य हो सकता है, डिसेंट व्यक्ति हो सकता है, डिसेंट वातावरण हो सकता है, डिसेंट किसी का बोला हुआ महावाक्य हो सकता है। कोई भी चीज के लिए हम ये डिसेंट विशेषण यूज करते हैं, ये चीज बहुत डिसेंट है, ये व्यक्ति बहुत डिसेंट है, इसके बिहेवियर बहुत डिसेंट है, ऐसे करके। तो डिसेंट का मतलब होता है बहुत सुपीरियर क्वालिटी का, बहुत ही सुंदर। अब मान लीजिए अपन बहुत सारे लोगों से मिले और एक आदमी का व्यवहार बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही सुंदर है, तो अपने को वो याद रह जाता है, अरे वो व्यक्ति क्या था, उसने क्या हमसे मुलाकात की, क्या बात की, उसका व्यवहार कितना अच्छा था, बड़ा रॉयल था, बड़ा डिसेंट था। हमने भोजन खाया, लेकिन एक जगह ऐसा भोजन खाया, उसके लिए भी अंदर से निकला क्या डिसेंट भोजन था, क्या बढ़िया था, वो भी याद रह जाएगा। बाकी हमने कई जगह खाया वो भूल गया। हमने कोई वस्तु देखी बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव थी, वो भी याद रह जाएगी, अरे अमुक जगह हम गए थे, हमने एक ऐसी चीज़ देखी, अभी भी वो आँखों के सामने है, भूल नहीं रही है, बड़ा सौंदर्य था उसमें, वो भी याद रह जाएगा। कई बार किसी व्यक्ति का सौंदर्य, किसी और चीज़ का सौंदर्य, वो भी मनुष्य की आँख में छप जाता है, क्योंकि वो बाकियों से भिन्न होता है, यूनिक होता है, न्यारा होता है। तो मेमोरी में कौन सी बात रहती है जो बाकियों से न्यारी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छी हो, लुभावनी हो? अब ये ला है स्मृति का। अब इस ला के अनुसार हम देखें कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर कौन है सबसे सुंदर। कहते हैं हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वही होता है जो सुंदर कर्म करता है। तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में सबसे सुंदर कर्म करने वाला कौन है? बाबा ही है ना। किसी भी प्रकार की ब्यूटी को सामने रख लीजिए, दुनिया में भी ब्यूटीफुल चीजें, ब्यूटीफुल व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो अल्पकाल के लिए। आपने आज देखा बहुत सुंदर है, 10 साल बाद देखा आप कहती है अरे भाई आप तो वो लगते ही नहीं हो, हैं आप तो बदल गए। अब आप ये तो नहीं कह सकते उसको कि आप पहले जैसे सुंदर नहीं है, भद्दे हो गए, उसको चुभ जाएगी बात। पर आपको अंदर से आता तो है ना कि पहले जैसी सुंदरता नहीं रही। मकान देख लीजिए, व्यक्ति देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, लेकिन बाबा की सुंदरता, उसके ऊपर ना काल का असर है, किसी भी चीज का असर नहीं है, काल है वो। कई चीजें ऐसी होती हैं फ्रंट से देखो तो सुंदर लगती हैं, लेकिन बैक पोज देखो तो अच्छा ही नहीं है, साइड पोज देखो तो अच्छा ही नहीं है। लेकिन शिव बाबा का चाहे फ्रंट पोज देखो, चाहे बैक पोज देखो, चाहे साइड पोज देखो, सब क्या है? डिसेंट है। कर्म देखो, बोल देखो, व्यवहार देखो, कर्तव्य देखो, उनका प्यार देखो, उनकी डीलिंग देखो, क्या क्या देखो, जो भी देखो वो सब क्या है? चलिए 2 मिनट बाबा के। लॉ ऑफ डिसेंसी की बात कर रहे थे और इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमें बाबा ही सबसे डिसेंट नज़र आते हैं, और इसलिए बाबा की याद हमारे लिए बहुत सरल है, क्योंकि उनसे अच्छा और कोई है ही नहीं, उनसे डिसेंट और कोई है ही नहीं। फिर दूसरा मेमोरी के लिए जो ला है उसको हम कहते हैं ला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माना जो बात बार बार होती है, कहते हैं ना, ये घटना तो फ्रीक्वेंटली घटती है भाई, बार बार घटती है। तो कौन सी चीज हमारी मेमोरी में रह जाती है जो बार बार हमारे सामने घटती है, या बार बार देखने में आती है, या बार बार सुनने में आती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने आज देखा और कल फिर देख लिया, परसों फिर देख लिया, तो कहेंगे ये तो रोज ही मिलता है, फ्रीक्वेंटली मिलता है मुझे, तो इसको तो मैं जानता हूँ, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो रोज ही मेरी आंखों के सामने आता है। तो जो चीज बार बार नजरों में आती है, मन में आती है, वो भी मन में ना चाहते हुए भी बस जाती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहती हैं कि शिव बाबा को फ्रीक्वेंटली याद करो, बार बार याद करो। ऐसे नहीं कि एक बार सुबह याद किया, जैसे बाबा ने इस बार 18 जनवरी की मुरली में, इससे पहले वाली मुरली में बोला था कि बच्चों का अमृत वेला तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या है? अभी अभी याद किया, फिर याद किया, फिर याद किया, तो उसको भूलेंगे क्या? भूलते कब है? जब एक बार याद किया और उसके बाद कर्म में खो गए, फिर बहुत देर के बाद कार्य पूरा कर लें, पूरा कर लें, कार्य तो 6 घंटे चला, 8 घंटे चला, काम पूरा करने के बाद याद करेंगे, तो तब तक तो पूरी तरह से विस्मृति हो जाती है। अब दोबारा से फिर नए सिरे से शुरुआत करो, मैं आत्मा हूँ, 6 घंटा कर्म करते, इतना देह अभिमान में आ गए कि दोबारा याद करने लगते ही हैं, तो याद आता नहीं है, तो ये तो फ्रीक्वेंट याद नहीं हुई। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में याद को रिवाइज करना है, ये है लाओ फ्रीक्वेंसी। फिर एक और ला है जिसको हम कहते हैं ला ऑफ रिसेंसी। ये रिसेंट शब्द से बना है, अभी अभी कोई घटना घटती है उसको कहते हैं, तो रिसेंट घटी है, अभी अभी तो घटी है, अभी तो ये हुआ है। तो जो रिसेंट घटना होती है वो याद हो जाती है। आज का आप पेपर पढ़ेंगे तो आज उसमें जो भी घटनाएं घटी होंगी वो आपको याद रहेंगी, लेकिन 10 दिन पहले का पेपर पढ़ा होगा उसकी जो घटनाएं थी वो सारी फिसल गई होंगी। आज आपने किसी से मोबाइल पे बात की होगी, आपको याद होगा, वो नंबर भी हो सकता है याद हो जाए, और कई दिन पहले बात की थी, ना वो व्यक्ति का नाम याद है ना वो नंबर याद है, क्योंकि रिसेंट घटना नहीं है, वो बहुत पुरानी बात है। तो रोज के जीवन में हमारी स्मृति में कौन सी बातें रहती हैं जो रिसेंटली घटती हैं, अभी अभी जो हुई हैं, और अगर कोई उस रिसेंट बात को याद ना रख पाए तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं भाई, अरे अभी अभी ये बात हुई थी और अभी भी आपको याद नहीं है। मान लो अभी अभी अपन क्लास सुन के आए और फिर कोई पूछे कि भाई एक बात तो सुनाओ, तो अपन कहें भाई एक भी बात याद नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति मुंह देखेगा ना, अरे भाई एक भी मुरली की एक तो बात सुना दो, एक भी याद नहीं है, तो उसको आश्चर्य आएगा ना, अभी सुनी थी, सुबह से शाम भी नहीं हुई और अभी भी याद नहीं है। तो रिसेंट बात अगर याद ना हो तो अपने को क्या लगता है कि ये व्यक्ति पता नहीं यहाँ है भी या कहीं और है, ये ठीक भी है या नहीं है, इसको अभी अभी की बात भी याद नहीं है। तो अभी अभी की बात याद रहना माना साउंड माइंड, साउंड इंटेलेक्ट, एक्टिव मन, एक्टिव बुद्धि। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद को भी रिसेंट बनाओ। अभी अभी याद किया तो अभी याद करने में, फिर याद करने में क्या मुश्किल है? अभी अभी तो याद किया था, अभी अभी योग लगाया, बहुत अच्छा अनुभव किया, तो अभी फिर याद करने में क्या मुश्किल है, अभी फिर अनुभव करने में क्या मुश्किल है? रिसेंट घटना है ना, तो उसको रिवाइज करने में क्या मुश्किल है? तो ये भी स्मृति का एक नियम है, अभी अभी याद किया और फिर याद किया तो वो याद पक्की हो जाती है। स्मृति का एक और नियम है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जो अपने समान चीज होती है वो व्यक्ति को याद रह जाती है। मान लीजिए यहाँ कोई आपको मिले, दूसरे सेंटर का भाई बहन, और आपको कहे कि हमारे शहर में एक बिल्कुल आप जैसा ही मिलता जुलता भाई या बहन है, तो आपके मन में पहले तो ये क्यूरियोसिटी जागेगी कि मैं कभी ना कभी उस शहर में जाऊं जरूर। और मान लो उस शहर में चले भी गए तो फिर क्या कहेंगे उस भाई या बहन को, अरे भाई वो कौन है जिसका आपने एक बार जिक्र किया था, बिल्कुल मेरे जैसा कौन है? अब ये बात याद कैसे रह गई? उसने बातें तो और भी बहुत सारी की थी, वो सारी भूल गई, लेकिन ये वाली बात 2 साल 3 साल गुजर गए फिर भी ज्यों की त्यों याद है। मेरे जैसा है ना, या यही कोई कह दे कि ये फलाना भाई बहन तो आप जैसा लगता है, तो भीड़ में जब सब बैठे होंगे तो हमारी नजर किस पे जाएगी? उस पे जाएगी, अच्छा ये मेरे जैसा लगता है, अच्छा मैं इस जैसा लगता हूँ। बाकी सब भूल गए लेकिन वो एक व्यक्ति याद रह गया। तो हमारी किसी भी चीज से कोई सिमिलर चीज हो, फेस से हो या हमारी आदतों से हो या हमारी किसी पर्टिकुलर चीज से हो, तो वो हमें याद रह जाता है, भी मेरे जैसा ही है ना, मेरे जैसा ही है ना। तो शिव बाबा किस जैसा है? शिव बाबा पे भी तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी लागू होता है ना। शिव बाबा किस जैसा है? बाबा का रूप भी ज्योति बिंदु, हमारा रूप भी ज्योति बिंदु। बाबा कैसा लगता है? हमारे जैसा। हम कैसे लगते हैं? बाबा जैसे, एक जैसा है ना रूप रंग। शिव बाबा का रूप कैसा है? हमारे जैसा। शिव बाबा का घर कौन सा है? हमारे जैसा, जो हमारा घर है। शिव बाबा के गुण कैसे हैं? जो गुण आत्मा में हैं, बाबा में भी वही गुण है, तो क्या हुआ, समानता हो गई ना। जो समान चीज होती है वो अट्रैक्ट करती है। भक्ति में ही समानता का ज्ञान नहीं था, इसलिए भक्ति में भगवान की याद आई नहीं। एक बार डर के मारे या कैसे भी थोड़ा याद किया स्वार्थवश, उसके बाद बुद्धि में कुछ टिका ही नहीं, भूल गई। किसी भी भक्त को टिका ही नहीं बुद्धि में कुछ भी, और इसलिए अभी भी भक्त लोग यही शिकायत करते हैं कि हमारा भगवान से योग नहीं लगता। लेकिन जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, हमें बाबा भूलता ही नहीं है, अपने आप याद आता है। ऐसे लगता है जैसे हमने कम याद किया और बाबा ने हमको ज्यादा याद किया, ऐसे लगता है हमने थोड़ा पुरुषार्थ किया और बाबा ने हमें इतना याद का बल दिया, इतना याद का सुख अनुभव करवाया। तो हमारा थोड़ा पुरुषार्थ और प्राप्ति बहुत ज्यादा, और भक्तों का बहुत 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 कठोर पुरुषार्थ और प्राप्ति बहुत थोड़ी, वो ना के बराबर। तो हमें क्यों सरलता से बाबा की याद आ जाती है? क्योंकि बाबा का और हमारा सब मिलता जुलता है, एक समान है। इसलिए बाबा तो अभी साकारी रूप में भी कहते हैं, बाबा भी विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, तुम बच्चे भी विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुए हो, बाबा भी मुक्त मुक्ति दाता हैं, तुम बच्चे भी मास्टर मुक्ति दाता हो, बाबा भी सबके, बाबा को भी सब भक्त अपने इष्ट और इष्ट के रूप में याद करती हैं, तुम भी भक्तों के इष्ट हो। तो बाबा मुरली में जो बातें सुनाता है उनमें हमें बराबरी देता है, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप बच्चे हो, क्यों इस समानता के आधार पे याद करना सरल हो जाता है। और जैसे समानता के आधार पे याद करना सरल है ना, ऐसे ही असमानता को देख करके भी याद करना सरल होता है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिसिमिलैरिटी। ये भी एक लॉ है स्मृति के लिए, ऑपोजिट चीज को देख करके दूसरी चीज याद आती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ही लायक है, बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा बच्चा व्यसनों में ग्रस्त है, ना उसकी कोई ठीक से दिनचर्या है। तो जब उस व्यसनी बच्चे को देखेंगे तो तुरंत क्या याद आएगा, अरे वो दूसरा बच्चा हमने देखा, वो तो इतना लायक, इतना अच्छा, देख इसको रही है, याद उसकी आ रही है। और उसको देखेंगे तो उसकी भी याद आ जाएगी, ये कितना अच्छा है, लेकिन इसके भाई को क्या हुआ, वो ऐसा कैसे हो गया। ऑपोजिट चीज की भी याद आती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब आप इस गंदी दुनिया को देखते हो, विकारी दुनिया को देखते हो, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार, तो कौन याद आता है। न्यूज पढ़ते हैं, एक्सीडेंट हो गया, सुनते हैं, क्या याद आता है। बाबा ने कहा था ना अचानक सब कुछ होगा, अभी एक दो दिन पहले यहाँ आसपास कहीं हुआ है एक्सीडेंट, तो उसमें वो गाड़ी वाला दुकान में ही घुस गया, तो दुकान में तो आदमी बेचारा शांति से बैठा अपना काम कर रहा था, लेकिन वो गाड़ी वाला वहाँ भी घुस गया और वो दीवार वीवार टूट गई और वो बेचारा दुकान में बैठा ही परलोक चला गया। अब कई लोग कहते हैं जी हम तो बाहर ही नहीं निकले, हमारा क्या नुकसान होगा, लेकिन जिसको जाना है ना वो घर में बैठा भी चला जाएगा, मौत वहाँ भी आ जाएगी जिसका टाइम आया हुआ हो। तो क्या याद आता है, ऐसा समाचार सुनेंगे, ये ऐसी दुनिया है जहाँ घर बैठे भी आदमी सुरक्षित नहीं है, क्या पता कहाँ अचानक क्या हो जाए, तो क्या याद आएगा, ओहो बाबा आई कैसी दुनिया हो गई है, अब तो हम सत्युग की दुनिया में जाने वाले हैं, जाना कोई एक्सीडेंट होगा ना कुछ होगा कुछ, तो क्या याद आया, तुरंत बुराई देखते ही अच्छाई की दुनिया याद आई। कोई बहुत झूठ बोलता है तो क्या याद आता है, शिव बाबा सच्चा, गॉड इज ट्रुथ, बाबा ने हम बच्चों को कितना सच्चा बनाया, वाह बाबा वाह वाह, तुरंत बाबा। कोई बहुत ऐसे चीटिंग करने वाला, कोई बहुत ऐसा काम क्रोध लोभ किसी भी विकार के अधीन व्यक्ति को देखते हैं तो क्या याद आता है, ओहो देखो क्या हम देवता थे और ये आज क्या बन गया, ये भारत देवताओं की भूमि थी, इस भारत में अब देखो देवता अपने देवताई रूप को भूल के कैसे कैसे बन गए। तो ऑपोजिट चीज को देख करके भी याद आती है। एक बार हम लोग कहीं पे गए थे, कोई प्रोग्राम था, तो किसी मंत्री को उस प्रोग्राम का उद्घाटन करना था, लेकिन उन दिनों उनका चुनाव का चल रहा था, उसकी इलेक्शन की सभा हो रही थी, तो हमको कहा गया कि आप थोड़ा वेट करो, मंत्री जी चुनाव सभा में भाषण देने के बाद फिर आपके कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कोई रैली थी, उसको रवाना करना था मंत्री जी को, तो हम सब वहाँ खड़े हो गए, बहुत सारे भाई बहन थे, और ना चाहते भी उसका भाषण तो सुनना ही पड़ा ना, क्योंकि भाषण पूरा होते ही उसको आना था, और दोनों ही पास पास थे, हमारा प्रोग्राम भी उनका भी, तो खड़े हो गए भाषण तो सुनने लगे। तो हमने देखा कि उसने भाषण में उसका जो प्रतिद्वंद्वी था उसके लिए बहुत कुछ बोला, ऐसे शब्द भी बोले जो आमतौर पे नहीं बोले जाने चाहिए, और बहुत बड़े बड़े माइक लगे हुए थे, कम से कम भी आधा किलोमीटर या किलोमीटर तक तो आवाज़ पहुंच रही होगी, बहुत दूर दूर तक आवाज़ जा रही थी, और बोलने वाला इतना जोर जोर से बोल रहा था, जैसे अपन बोलते हैं तो बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन वो तो ऐसे दहाड़ते हैं, तो बहुत जोर जोर से बोल रहा था। माइक बहुत लगे हुए थे और ऑपोजिट पार्टी के लिए वो ऐसे शब्द यूज कर रहा था। बिलीव ही नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति इतना खराब हो सकता है जितना खराबियों का वो वर्णन कर रहा था। तो ऐसे लग रहा था कि ये सरेआम सफेद झूठ बोल रहा है। तो हमको प्रोग्राम रैली थी ना, तो रैली के बाद फिर आगे जाना था जगह जगह भाषण करने के लिए, उसको रैली को फ्लैग दिखाना था। तो जगह जगह भाषण करने जाना है तो भाषण में क्या सुनाते हैं, थोड़ी पुरानी बात है, उन दिनों ब्रह्मा कुमारी इसका इतना नाम नहीं था, तो मन में थोड़ा रहता तो है ना, भाई ऐसी ऐसी जगह जाना है, ऐसी ऐसी जगह भाषण करना है, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, है ना। लेकिन उसका भाषण सुन के मन में क्या ख्याल आया कि देखो ये आदमी सफेद झूठ बोल रहा है और इतना जोर जोर से बोल रहा है और इतने सारे माइक लगा के बोल रहा है और इतनी सारी पब्लिक में बोल रहा है, तो इसको झूठ बोलते जरा भी डर नहीं लग रहा। और हमको क्या करना है, लोगों को सच्ची बात सुनानी, और हम ये सोच रहे हैं पता नहीं कोई सुनेगा कि नहीं। जब लोग इसके झूठ को सुन सकते हैं दत्चित होके, तो हमारा सच को क्यों नहीं सुनेंगे लोग। और जब ये झूठ इतना जोर जोर से बोल सकता है निर्भय होकर के, इसको किसी का डर नहीं है कि किसी ने आके मुझे ये कह दिया, तो जब ये झूठ बोलता हुआ नहीं डरता तो हम सच बोलते हुए काहे को डरते। तो उस मंत्री जी के भाषण ने, हम जितने भी थे भाई बहने रैली में, सबको बहुत अच्छी प्रेरणा दी, सबका भय निकल गया। तो ये क्या हुआ, ऑपोजिट चीज ने ऑपोजिट बात याद दिला दी, उसकी झूठ ने हमको सच की याद दिला दी। उसकी उसकी झूठ बोलने में निर्भयता ने हमको सच बोलने में निर्भयता प्रदान कर दी। तो जैसे कई भाई बहन आते हैं, कहते हैं बहन जी दुनिया बड़ी खराब है, ये खराब दुनिया में क्या योग लगेगा, ऐसी आप रह के देखो ना दुनिया में, आप तो समर्पित हो गई हैं, यहाँ बैठे हैं अच्छी जगह पे, हम आपको पता है कैसी दुनिया में रहते हैं। अरे उस दुनिया में तो योग लगाने का मौका है, जब आप खराब लोगों को देखेंगे तो योग अच्छा नहीं लगेगा, आपको वैराग नहीं आएगा, आपका मोह नहीं टूटेगा। बाबा ने इसीलिए तो कहा कि उसके बीच में रहना है, क्योंकि जितना अच्छा पुरुषार्थ हम उनके बीच में रह करके करेंगे और जितने अनुभवी हम उनके बीच में रह करके बनेंगे, अगर उनकी उन बातों को ना देखें तो कभी ना कभी हमें धोखा हो सकता है कि ये लोग हो सकता है बहुत अच्छे हों, ये ऐसा हो ये ऐसा हो, लेकिन रोज रोज जब उनके कर्म और उनके व्यवहार और उनकी बातें देखते हैं तो क्या ख्याल आता है, सचमुच बाबा ठीक कहता, अब तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, सचमुच पाप का घड़ा भर गया है, सचमुच अब तो इसको चले ही जाना चाहिए, बस अब तो बस जल्दी चाहिए। ये भावनाएं कब आती हैं, जब उनके उन कर्म और व्यवहारों को देखते हैं। इसलिए किसी भी नेगेटिव बात को देख करके डरना नहीं है, नेगेटिव बात को देख करके पॉजिटिव को याद करना है। इसलिए जितनी नेगेटिव बातें आए सामने अच्छा है, ताकि वो हमें पॉजिटिव बातों की याद दिलाएं, उसी से कनेक्टेड पॉजिटिव बात को याद करें। तो ये भी स्मृति का एक नियम है, बुराई को देख करके अच्छाई को याद करना। तो जब जब आप बाबा की याद में बैठें तो इन बातों के आधार पे इनका चिंतन करके आप इनमें और बहुत सारी बातें ऐड कर सकते हैं, लेकिन योग का आधार मनन चिंतन है। खाली बुद्धि में तो कुछ नहीं आएगा ना, योग का आधार भी ज्ञान है। तो इस तरह से मनन करेंगे तो बाबा से हमारी बेतार का जो तार है वो जुटा रहेगा, बिना मेहनत के हमारी याद बहुत सरल हो जाएगी, हमको ऐसे लगेगा कि हम याद नहीं करते हैं लेकिन ऑटोमेटिक याद आती है, हमको ऐसे लगेगा कि जैसे बाबा जितना हम पात्र हैं उससे अधिक हमें प्यार दे रहा है, और जैसे बाबा हमारी ही सुरक्षा में है, भले ही बाबा कहता है कि मैं सारे विश्व की आत्माओं का पिता हूँ, लेकिन हमें ऐसे लगेगा कि बाबा जैसे पर्सनल मेरा ही है, क्योंकि मेरे पे ही वो सारा ध्यान लगाता है, जैसे मुझे ही सारी अनुभूतियाँ करवाता है, तो ऐसे लगेगा कि इंटरनेशनल होते हुए भी बाबा मेरा पर्सनल है, मेरे नज़दीक है, मेरा अपना है। क्योंकि जितना हमारी बुद्धि में बाबा के लिए भावनाएं होती हैं, तो उतनी ही हमें क्लोज फीलिंग्स आती हैं, उतनी ही अच्छी हमें अनुभूतियाँ होती हैं। और हमारा संगम युग का जीवन तो इस प्यार के लिए ही कुर्बान है। अगर हम संगम युग में भगवान के ऐसे प्यार को अनुभव नहीं कर पाए, तो हमें और कौन सा जन्म मिलेगा? फिर तो 5,000 साल के चक्र में हम यूं ही घूमते रहेंगे बिना ही प्यार के। भगवान का प्यार ही तो सबसे बड़ा उपहार है, और वो इसी समय मिलता है। तो हमें अपनी बुद्धि को ऐसा हल्का, क्लीन और क्लियर बनाना है, ज्ञान से इतना भरपूर रखना है कि हमें ईश्वरीय प्रेम की सरल अनुभूति होती रहे, और इस संगम युगी जीवन में हम उड़ते रहें खुशियों में, आनंद में, मौज में। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी खुशी नहीं छोड़ो। कल हमको दादी जानकी ने क्लास कराया तो उसमें भी कहा कि खुशी गुम होना भी धर्मराज की सजा है। सजाएं ऊपर जाके मिलेंगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन वर्तमान जीवन में अगर खुशी गुम हो जाती है तो वो भी सजा है। तो क्यों खुशी गुम हुई? जरूर कोई छोटी मोटी बात आई होगी। तो बात को नहीं देखना है, हमको ये दृढ़ संकल्प करना है कि चाहे झुकना पड़े, चाहे पीछे हटना पड़े, चाहे चुप रहना पड़े, चाहे थोड़ा सहन करना पड़े, लेकिन हमको ये सजा नहीं चाहिए। अर्थात हमें अपनी खुशी को नहीं गंवाना है, कुछ भी हो। और खुशी, अल्पकाल की खुशी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो बाबा की याद की खुशी। कोई भी बात आती है तो बाबा से लिंक टूटता है, लिंक टूटता है तो खुशी गायब होती है। और उस बात को नेग्लेक्ट करके हम फिर अपनी पटरी पे आ जाते हैं तो फिर याद की खुशी अंदर भर जाती है, फिर अतिंद्रिय आनंद आने लगता है। तो इसके लिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि कोई भी बात आकर के मेरे लिंक को तोड़े नहीं, मुझे याद बाबा की एक्यूरेट चाहिए। बाकी चीज़ें कम मिलेंगी तो चलेगा, लेकिन बाबा की याद कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये संगम योगी जीवन प्रेम से और खुशी से भरपूर रहेगा। ओम शांति।